Record.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ جو بدھ کی صبح کو ہمارا درس ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم حضرت یوسف فقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ دروس امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھتے ہیں. ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا ایک بیان پڑھ کے مکمل ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے ریلیشن شپ مینجمنٹ پڑھنا شروع کیا تھا. تو ریلیشن شپ مینجمنٹ کے اندر حضرت نے تمہید یہ باندھی تھی کہ عام طور پر عورتوں کی زندگی کا جو سب سے ویک پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محرم رشتہ داروں سے اچھے تعلقات نہیں رکھ پاتی ہیں. غیر محرم رشتہ داروں سے یا غیر محرم غیر رشتہ دار جو رشتہ دار نہیں ہے، چاہے رشتہ دار ہوں چاہے رشتہ دار نہیں ہوں، لیکن غیر محرم ہے تو ان کے ساتھ تو تعلق ویسے ہی نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پردے کے حکم کی وجہ سے. لیکن محرم رشتہ داروں کے ساتھ تو رکھنا ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی تعلقات صحیح نہیں رکھ پاتی ہیں. کہیں خاوند کے ساتھ مسئلہ، کہیں ساس کے ساتھ مسئلہ، اور کہیں اولاد کے ساتھ مسئلہ، اور یہ مسائل زندگی کا بیشتر وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو ان مسائل سے نکلنے کا راستہ حضرت نے پھر ان دروس کے اندر عورتوں کو سکھلایا کہ بھائی ریلیشن شپس اچھی بنائیں، جن کے ساتھ بنانی چاہیے ان کے ساتھ تو اچھی بنائیں نا. تو ہم نے اس میں ایک ایڈ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بھی، جو کہ حضرت نے اس والے بیان کے اندر نہیں فرمائی تھی، لیکن ظاہر ہے ان کا کام ہی تھا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس درس کے اندر انہوں نے خالی جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کے اندر جو عورت کو انسانوں کے ساتھ تعلقات پیش آتے ہیں تو ان کی بات کری تھی. تو ہم نے ان میں سے بھی پھر خاوند کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ کا موضوع پڑھ کے مکمل کر لیا ہے، اور اس کے بعد پھر سسرال والوں کے ساتھ، اور پھر ساس محترمہ کے ساتھ، یہ بھی مکمل ہو گیا تھا پچھلی کلاس میں. اور آج جو ہے وہ بچوں کے ساتھ تعلق، کہ اپنی اولاد کے ساتھ تعلق، دوسرے بچوں کے ساتھ یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اپنے ذاتی بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ تعلق. تو اس میں عزت نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ظاہر اچھا ہونا چاہیے آف کورس، ٹھیک ہے، لیکن تفصیل اس کی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلی بات کہ ہر وقت سٹریسفل کنڈیشن یعنی دباؤ کی حالت میں نہ رہیں، بلکہ اپنے دباؤ کو کم کریں. ہر وقت سٹریسفل کنڈیشن میں نہ رہیں، اپنے دباؤ کو کم کریں. ایزی سیڈ دین ڈن، کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل کام ہے. نہیں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک محاورہ ہے. محاورہ ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت بھی ہے، لیکن محاورہ تو محاورہ ہوتا ہے نا. جس طرح شعر و شاعری ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ شعر و شاعری میں ہر چیز جو ہے وہ حقیقت ہی ہو. اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر محاورہ جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر فٹ بھی بیٹھتا ہو. تو لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ نہ کیے کر کچھ نہ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح سے اپنے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے ارد گرد سارے لوگوں کو شوٹ کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ سارے جو ہیں وہ زیر زمین چلے جائیں اور صرف میں ہی زمین کے اوپر رہ جاؤں. پھر کوئی سٹریس ہی نہیں ہوگا، کوئی مجھے سٹریس دینے والا باقی ہی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حل ہے جو کہ آج کل جو ہے وہ سٹریس کی ایکسٹریمٹی کو ریچ کرنے کے بعد لوگوں نے یہ حل بھی نکال لیا ہے کہ اپنے سٹریس دینے والوں کو دنیا سے ہی रुख्सत कर दो। अमेरिका यूरोप के अंदर ये बहुत आम हुआ है इस वक्त, ठीक है। अमेरिका यूरोप के तरक्की पजीर मुआशरे के अंदर ये बात बहुत आम हो रही है, क्योंकि वहां पर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो इंतहाई दर्जों को छू चुके हैं, इंतहाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो है वो कत्ल जो है ना वो अगले बंदे का ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरी जगहों पर तो क्या, इवन स्कूलों के अंदर, इवन स्कूलों के अंदर, यानी जहां पर टीन एजर बच्चे जाते हैं ना, बच्चियां जाती हैं, वहां पर कत्ल तो बहुत ज्यादा हो गया। आप कभी रिपोर्ट्स पढ़े इसकी तो आपको पता चलेगा कि कितना बुरा हाल है। यूनाइटेड किंगडम, यूके के स्कूल्स के अंदर जो डेली टेलीग्राफ, एक बहुत ही मोतबर उनका मैगज़ीन वो है, यानी अखबार है, तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है ना यूके के स्कूल्स के, तो मुझे एक बात अभी याद आ रही है कि 20%, यानी हर 100 में से 20 टीचर्स हर स्कूल के अंदर किसी न किसी जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। उनके बच्चे उनको, यानी उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको या तो मुक्का मार चुके हैं, या उनको दूसरी तरीके से जो है वो स्टैब कर चुके हैं, छुरियां मार चुके हैं, या उनको कत्ल कर चुके हैं। 20% टीचर यूके के अंदर ऐसे हैं, हर 100 में से 20, 20% का ये मतलब होता है ना कि जो कि जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हो चुके हैं। और जो बात साथ में रहने वाले बच्चे होते हैं वो तो, यानी कितना कत्ल होता है, कितना जो है वो छुरियां मारी जाती हैं एक दूसरे को, कितने जो है वो, तो उसके अलावा जुबानी बुलियंग होती है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि छोटी मोटी जुबान से और थोड़ा बहुत जो है वो हाथ से कभी किसी को लगा दिया तो इसको मेंटल हेल्थ इशू नहीं कहा जाएगा, लेकिन छुरी लेकर के मार देना अगले बंदे को, अगर आपके पास पिस्तौल नहीं है तो छुरी से मार देना, ये नॉर्मल हालात में होते ना, ये कोई मैदानी जंग तो नहीं है आपका स्कूल, ये मैदानी जंग तो नहीं है आपके जो घर हैं, तो वहां पे छुरियां क्यों चल रही हैं, वहां पे जो है वो बंदूकें क्यों चल रही हैं, ठीक है। तो ये मामला चल रहे हैं, तो ये क्या है कि ये जो जिसके साथ आपकी नहीं बनती उसको मार दो, बस खत्म कर दो उसको, ठीक है, तो इससे मसला खत्म हो जाएगा। जाहिर इससे मसला खत्म नहीं होता, बल्कि इससे ज्यादा बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो जाता है। तो फिर यहां पर जो हजरत फरमा रहे हैं कि हर वक्त स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना रहें, अपने दबाव को कम करें, तो फिर ये कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो अपनी सोच पे मेहनत करनी पड़ती है, और अपने सोच को जो है ना वो जरा बेहतर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कैसे बेहतर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि सोच को कैसे बेहतर किया जाए, ठीक है। जैसे नमाज पढ़ना, तो वो बगैर सीखे हुए आप नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है। रोजा तो चलो रख लेंगी बगैर सीखे हुए, क्योंकि उसके लिए बस खाना पीना खत्म, लेकिन दो चार चीजें उसमें भी सीखनी पड़ती हैं कि किस वक्त शुरू करना है, किस वक्त खत्म करना है, ठीक है, क्या खा सकते, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोजा रखना जो है वो बस खाना पीना से दूर रहना है, तो ये रोजा हो गया आपका, थोड़ा बहुत सीख करके रोजा हो जाता है। नमाज तो नहीं आप कर सकती ना बगैर सीखे हुए, जकात भी नहीं दे सकती बगैर सीखे हुए, जैसे जकात की अब क्लास हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से अपनी सोच को भी बदलने के लिए सीखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो नेमतें अल्लाह ताला की मौजूद हैं, जो नेमतें मौजूद हैं, ठीक है, उनको देख करके उनके ऊपर शुक्र अदा करना होता है, ठीक है। नेमतों को देख करके, कितना मुश्किल काम है ना नेमतों को देखना, आंखें खोलनी पड़ती हैं उसके लिए, आंखें बंद करके नेमतें नजर नहीं आएंगी, तो आंखें खोलनी पड़ती हैं, बड़ा मुश्किल काम है वैसे ये, और नेमत को देखना पड़ता है, जैसे अपनी औलाद मिसाल के तौर पर बेटे को देखना पड़ता है, अच्छा बेटा है, अल्लाह का शुक्र, कितना मुश्किल काम है ये काम करना, ठीक है। औलाद है, अल्लाह का शुक्र, घर है, अल्लाह का शुक्र, कपड़े हैं, अल्लाह का शुक्र, गाड़ी है, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। और यानी वह इन तरुद्दो नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, नेमतें देने वाले ने तो कहा
अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहोगे ना, तुम शुमार नहीं कर सकते हो, इतनी नेमतें हैं। तो उसके ऊपर हमें याद आया कि हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात भेजी, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं। ठीक है, तो लिखा, खुश रहने का अजीब अंदाज। तो लिखा कि एक खातून की आदत थी कि वो रोजाना रात को सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिख लिया करती, रात को सोने से पहले, यानी एहतसाब करना भी जिसको कहते हैं ना। तो उन्होंने एक बड़ा अजीब तरीका एहतसाब करने का निकाला कि अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिखना शुरू कर दिया। एक शब्द उसने लिखा कि मैं खुश हूं कि मेरा शौहर तमाम रात जोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है, ये अल्लाह का शुक्र है। अगर जिंदा ना होता तो खर्राटे भी ना सुनने पड़ते, ठीक है, और अगर मेरे पास ना होता बल्कि रात को कहीं और गया हुआ होता, चाहे जॉब पे गया हुआ हो चाहे किसी और जगह पे गया हुआ हो, तो फिर खर्राटे नहीं सुनने को मिलते उसके। ठीक है, तो मैं खुश हूं कि मेरा शौहर तमाम रात जोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूं कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर मुझसे झगड़ता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात घर पर ही गुजारता है, आवारा गर्दी नहीं करता, घर पे गुजारता है, तो उसको मच्छर और खटमल काटते हैं, तो सुबह को फिर वो शिकायत करता है। ठीक है, कल कल तो नहीं, चंद चंद दिन पहले ही एक दोस्त कहने लगे कि कराची वालों की तो ये आदत है। अब वो थे किसी दूसरे शहर के, उनका कराची का ये एक्सपोजर था, और वैसे तो हमारा भी तकरीबन यही है कि कराची में लड़के जो है ना, वो रात को घर पे नहीं टिकते, बाहर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे गेम्स हैं, पान बैठ के खा रहे हैं, तो डब्बू खेल रहे हैं, तो पता नहीं क्या उल्टी सीधी जो है वो बातें कर रहे हैं। तो कितने लड़कों की आदत है, सबकी नहीं है ऑफकोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कितने लड़कों की आदत है कि वो बाहर जो है ना वो घंटे गुजारते हैं। हालांकि घर में बीवी भी होती है, घर में माँ भी होती है, घर में अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं, बिस्तर मौजूद है, सोने का वक्त है, लेकिन बाहर। ठीक है, तो ये औरत ने लिखा कि मैं खुश हूं कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात घर पर गुजारता है, आवारा गर्दी नहीं करता, मैं इस बात पर खुश हूं, अल्लाह का शुक्र। मैं खुश हूं कि हर महीना बिजली गैस पानी पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, बिल्स अदा करने पड़ते हैं, यानी ये सब चीजें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में हैं, अगर ये ना होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। ये और बात है कि हमारे शहर में कभी ना होने पर भी बिल आ जाता है, लेकिन आम तौर पर होने पर ही बिल आता है। ठीक है, अब तो बल्कि काफी बेहतर सिस्टम्स भी बन गए हैं, तो होने पे बिल आता है, तो अगर ना होती तो फिर बिल ही नहीं आता, लेकिन होती भी नहीं। ठीक है, मैं खुश हूं कि दिन खत्म होने तक मेरा थकन से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है, और ये ताकत और हिम्मत सिर्फ अल्लाह ही के फजल से है। ठीक है, अगर मैं फालिज जदा होती, अगर मुझे कोई ऐसी बीमारी लगी होती कि मैं उठ के काम ही नहीं कर सकती, तो फिर कैसे थकती। ठीक है, बहरहाल, तो इस तरह से सोचने का अंदाज होता है, इंसान हर चीज में से एक पॉजिटिव पहलू निकाल सकता है और एक शिकायत का पहलू भी हर चीज में से निकाल सकता है। अच्छी से अच्छी चीज के ऊपर शिकायत, ये क्यों नहीं, ये ऐसे क्यों नहीं, ये वैसे क्यों नहीं। ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम से अच्छा इंसान कोई हो सकता था? नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा रहमत अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर कोई और हो सकती थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर शिकायत करने वाले हैं, मा लिहाज़ा रसूल याकुलून तआम व यमशी फिल अस्वाक। ठीक है, उस नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर शिकायतें करने वाले, ये क्या हो गया इस रसूल को, ये किस किस्म का रसूल है, नाउज़ बिल्ला कहते थे ना वो लोग, ये किस किस्म का रसूल है, ये खाने भी खाता है रसूल होके खाना खाता है और बाजारों के अंदर चलते फिरते हैं रसूल होकर के। यानी आप इमेजिन करें शिकायत करने वाला इंसान जो है, दूसरों के ऊपर जो है ना, वो तनकीद करने वाला इंसान, वो हर चीज के अंदर, राइट, हर चीज के अंदर कोई ना कोई तनकीद। भाई जो शरण, जो शरअन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो चीज बैठती है, वो भी खैर ख्वाही की नीयत से की जा सकती है, लेकिन ये क्या अपनी तरफ से हर चीज के ऊपर जो है उल्टी सीधी जो है वो लगाए हुए हैं। ठीक है, तो शिकायत करने पर आए तो हर चीज में शिकायत की जा सकती है, और अगर शुक्र करने पर आए तो हर चीज में से शुक्र का पहलू निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यही है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में ना रहें, अपने दबाव को कम करें का ये मतलब है। ठीक है, बंदूक से मार देना मतलब नहीं है, और जो है ना वो लोगों से लड़ाई झगड़ा करके जो है वो उनको किसी तरीके से चुप करा देना, ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है, बल्कि पॉजिटिव के ऊपर फोकस करके उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये इसका मतलब है। तो फरमाते हैं बच्चों को टाइम दें, क्वालिटी टाइम ना दें, बल्कि अपने पूरे के पूरे टाइम को क्वालिटी बनाएं। ये नहीं कि बाकी टाइम तो जो है ना वो बुरा वक्त है और उसमें से छोटा सा क्वालिटी टाइम उठा के दे रहे हैं, ठीक है ना, कि 24 घंटे जो है ना वो कोई बैड क्वालिटी टाइम है, ठीक है, और उसमें से जो है ना वो आधा घंटा को क्वालिटी बना करके वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये नहीं करना है, बल्कि सारे वक्त को क्वालिटी टाइम बनाना है। ठीक है, सारे वक्त को अपने क्वालिटी टाइम बनाना है, और वो टाइम जो है वो बच्चों को देना है। जैसे कि चंद दिन पहले साजिद ने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर भी किए थी अपने हजरत की 10 नसीहतें, ठीक है, या 10 नसीहतों के साथ लिखा था या किसी और मैसेज में लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें ये लिखा था ना कि भाई हमारा जो टोटल एसेट है ना वो तो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमें तो सारा वक्त उन्हीं पे लगाना है, चाहे उनके बारे में हम फिक्र कर रहे हो, चाहे उनकी तालीम और तरबियत के लिए हम इल्म हासिल कर रहे हो, ये सारा उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस है, हमारा टाइम उन्हीं के लिए है। ठीक है, अपने ईमान की हिफाजत और अपने औलाद की ईमान की हिफाजत। अपने ईमान की हिफाजत कभी फायदा औलाद को होगा, तो अपने ईमान की हिफाजत भी औलाद ही के लिए फायदेमंद है। ये नहीं कि औलाद की ईमान की हिफाजत की फिक्र कर रहे हैं, अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर रहे, तो उससे भी औलाद को नुकसान। तो औलाद की हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत शर्त है, फिर उसके बाद औलाद की हिफाजत। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप प्लेन में सफर करती हैं तो प्लेन में जो पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि अगर प्लेन के अंदर, कैबिन के अंदर एयर प्रेशर कम होने लगा तो आपके ऊपर मास्क गिर जाएंगे, छत पर से जो है ना वो ऑक्सीजन मास्क गिर जाएंगे, पहले वो मास्क अपने आप को लगाएं, फिर अपने साथ में बैठे हुए किसी बच्चे को लगाएं। क्या मतलब, पहले अपनी हिफाजत करें फिर उसके बाद बच्चे की हिफाजत करें। क्यों? इसलिए कि अगर ऑक्सीजन कम हो गई और आपने खुद मास्क नहीं लगाया तो आप बच्चे को भी मास्क नहीं लगा सकेंगे, आप बच्चे को भी मास्क नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, इस वजह से खुद ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं, फिर जो है अपने बराबर बैठे बच्चे को लगाएं जो कि खुद मास्क नहीं लगा सकता। जाहिर है कोई बड़ा होगा तो वो खुद ही लगा लेगा मास्क, बच्चे को ही लगाना पड़ेगा ना माँ बाप को मास्क। ठीक है, तो अपनी हिफाजत भी उन्हीं की हिफाजत का सबब बन जाती है, उसी तरह अपने ईमान की हिफाजत भी उन्हीं के ईमान की हिफाजत का सबब भी बन जाती है। ठीक है, तो बच्चों को टाइम दें, उनके लिए इल्म हासिल करें, उनकी तालीम तरबियत करना सीखें, जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को पहचानना सीखें। दिस इज ऑल्सो गिविंग टाइम टू चिल्ड्रन। ठीक है, और फिर सीख करके उनको फिर सिखाएं या उनको, उनके ऊपर इस इल्म को अप्लाई करें। ठीक है, ये होता है बच्चों को टाइम देना। ठीक है, उनके साथ खेलना हो, उनके साथ जो है वो आपको बातें करनी हो, उनके साथ आपको बैठ के कुकिंग करनी हो, उनके साथ आपको बैठ करके कोई क्लास सुननी हो, उनके साथ बैठ करके कोई किताब पढ़नी हो। ठीक है, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन गिविंग टाइम, बच्चों को टाइम दें। ठीक है, उनके साथ बैठकर खाना खाएं, ये भी टाइम देना है बच्चों को, और उनको बिस्तर पे सुलाते वक्त अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। ठीक है, ये भी कुछ माएँ माशाल्लाह बहुत अच्छे से करती हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाना। ये और बात है कि बाकी वक्त भी अच्छी बातें करनी होती हैं, खाली सुलाते वक्त अच्छी बातें और बाकी वक्त बुरी बातें, इससे फायदा नहीं होता। ठीक है, तो बिस्तर पे सुलाते वक्त अच्छी अच्छी बातें सुनाए और इन बातों को नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़े। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़े क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ने से ही आप बच्चों की ईमानी तरबियत कर सकेंगे। ईमानी तरबियत, क्योंकि ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद करने का नाम है। नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद करने का नाम ईमान है। ठीक है, तो ईमानी तरबियत नबी अलैहिस्सलाम के तस्करे के बगैर हो ही नहीं सकती। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ बच्चों का एतमाद वाला ताल्लुक बनाए बगैर ईमानी तरबियत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके बगैर ईमान है ही नहीं। जैसे कि आम समझ यही थी ना, और हमारे क्लासों में भी यही थी जब तक कि उसको एड्रेस नहीं किया गया कि ईमान तो है ना, वो अल्लाह पर ईमान लाना ईमान है। पता ही नहीं अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अल्लाह है ये ईमान है? नहीं, अल्लाह है, अबू जहल भी कहता था अल्लाह है, अल्लाह से दुआएं भी मांगता था अबू जहल, राइट? और अल्लाह है ये अबू लहब भी मानता था, अल्लाह है ये यहूदी भी मानता है, अल्लाह है ये ईसाई भी मानता है। तो फिर ईमान, वो सारे ईमान वाले हैं, इसका मतलब है यहूदी भी ईमान वाला, अबू जहल भी ईमान वाला, अबू लहब भी ईमान वाला, ईसाई भी ईमान वाला, हत्ता के हिंदू भी जो है वो अल्लाह की एग्जिस्टेंस इनकार नहीं करता। ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं अल्लाह है ये ईमान है। नहीं, बल्कि अल्लाह वैसा है जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में बताया है, ये ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम ने जैसा बताया है कि अल्लाह तो ऐसा है, ये मान लेना ईमान है। और नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करके अल्लाह है ये ईमान नहीं है, ये कुफर है। कि अल्लाह का है को मान लेना, अल्लाह मौजूद है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जैसा अल्लाह के बारे में बताया है उसको ना मानना, ये कुफर है। ठीक है, कहने का मकसद क्या कि अपनी हर बात को नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, अल्लाह के बारे में भी बताया तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया। ऐसे कि अल्लाह के बारे में बच्चों को बता रहे हैं ना, तो साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम का भी नाम लेना कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला तो ऐसे हैं, अल्लाह ताला तो ये करते हैं, अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें दी हैं, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत बनाई है, ठीक है, अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें दी हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ें, तभी ईमानी तरबियत हो सकती है। और ये ईमानी तरबियत ये सिर्फ और सिर्फ माँ ने करनी होती है बच्चे की, कोई और नहीं कर सकता ये वाला काम। दो बातें याद रखें, उम्मीद है कि आप लिख भी रही होंगी। नंबर वन, के ईमानी तरबियत सिर्फ और सिर्फ माँ ही कर सकती है बच्चे की, बड़े की बात नहीं कर रहे, बच्चे की माँ ही कर सकती है। और दूसरी बात ये कि माँ ने अपने बच्चे की ईमानी तरबियत ही करनी है। दूसरी बात क्या? कि माँ ने अपने बच्चे की ईमानी तरबियत ही करनी है। इसका क्या मतलब है, इस जुमले का मतलब बताएं जरा। कि माँ ने अपने बच्चे की ईमानी तरबियत ही करनी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहला पहला जुमला तो हो गया ना कि बच्चे की ईमानी तरबियत माँ ही ने करनी है, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा जुमला कि माँ ने अपने बच्चे की ईमानी तरबियत ही करनी है, इसका क्या मतलब है? अच्छा बच्चे से यहाँ पे एक और भी चीज कि बच्चे से यहाँ पे मुराद जो है ना वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, ठीक है, जैसे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ठीक है, या 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्या कहा कि माँ ने बच्चे की, यानी 2 3 4 साल के बच्चे की ईमानी तरबियत ही करनी है। इसका क्या मतलब है भाई? ठीक का मतलब पता है ना उर्दू में क्या मतलब होता है? अंग्रेजी वाला ही नहीं है, उर्दू वाला ही है ना। यानी अच्छी तरबियत हर वक्त खुद सीख करके। अच्छा और क्या लिखा? मतलब सुन्नतों के मुताबिक पाल पोस कर बड़ा करना है। नहीं करेगी तो अल्लाह के यहाँ पकड़ोगे। बिकॉज स्मॉल चाइल्ड एजुकेशन शुड ओनली बी मेनली फोकस्ड ऑन ईमानी तरबियत। ठीक है जी, यही है। यानी पहले अपनी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, हर बात में अल्लाह और नबी पाक से का जिक्र, दुनियावी तालीम नहीं देनी है। नहीं, दुनियावी तालीम नहीं, बल्कि जिसको हम दीनी तालीम समझते हैं वो भी नहीं देना है, वो भी नहीं देनी। जिसको हम दीनी तालीम समझते हैं ना वो भी नहीं देनी है। क्या मतलब? ठीक है, ना तो दुनियावी तालीम देनी है ना दीनी तालीम देनी है, बल्कि ईमानी तालीम देनी, ईमानी। ठीक है, मतलब कहने का ये था कि मतलब क्या लिखा, मुसलमान बच्चे की सबसे पहले यही तरबियत करना असल है, फिर बाकी करेंगे, बाकी चीजें बाद में। क्या मतलब? के कायदा पढ़ाना बाद में, ठीक है, और दुआएं याद करवाना बाद में, और कुछ और इस किस्म के अफआल सिखा देना बाद में, ठीक है, ये बाकी सारी चीजें बाद में करने की हैं, इस उम्र के अंदर ईमानी तरबियत करनी, ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ना है, अल्लाह के साथ जोड़ना है, जैसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में बताया, ठीक है, और जन्नत के तसव्वुर के बारे में जोड़ना है, ठीक है। ये 3 4 चीजें ऐसी हैं जिसको के ईमानी तरबियत कहा जाता है, जिसको जहन साजी भी कहा जाता है। देखिए 2 साल की उम्र में ना, इसलिए कहा 2 साल की उम्र क्योंकि 2 साल में बच्चा जो है वो बातचीत करने और समझने के काबिल हो जाता है, ठीक है ना, उसको माँ की कुछ बात समझ में आनी शुरू हो जाती है, अल्फाज समझ में आनी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो अब माँ जो है ना वो ये बातें उससे करनी शुरू कर दे। वैसे तो उससे पहले ही ईमानी तरबियत हो रही होती है क्योंकि माहौल और दिल का तो असर पड़ रहा होता है ना, माँ के दिल के अंदर ईमान होगा तो बगैर अल्फाज के भी बच्चे के दिल के ऊपर उसका असर हो रहा। पढ़ा था ना इसी वाले बयान के शुरू में कि इंट्रा कार्डियक मैग्नेटिक सिस्टम क्या होता है, तो दिल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, वो दूसरे दिल के अंदर जाती है, तो माँ और बच्चे के दिल से ज्यादा करीब किसका दिल हो, किसका दिल हो सकता है? बच्चे के दिल से माँ के दिल के मुकाबले में किसका दिल करीब हो सकता है? तो माँ के दिल की का असर तो बच्चे के दिल पे इवन बातचीत से पहले भी हो रहा हो, अगर माँ का ईमान बना हुआ होगा, अगर माँ का अपना एतमाद नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बना हुआ होगा, अगर जो कि नहीं बना हुआ होता क्योंकि हम तालीम और तरबियत हम काफिरों से सीख रहे होते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से सीख रहे होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से नहीं सीख रहे होते हैं, तो कैसे ये ईमानी, ये कैसे ईमान बना हुआ है, ये कैसा ईमान बना हुआ है कि हम तालीम और तरबियत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से सीखने के बजाय काफिरों के तालीमी निजाम में सीख रहे हैं, हमने भी सीखे, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, तो ये कौन सा ईमान है, ये कहाँ का ईमान है, ये किस किस्म का ईमान है? इसका मतलब ये है कि माँ की अपनी ईमानी तरबियत नहीं हुई हुई, उसका ईमान नहीं बना हुआ है, तो जब उस माँ का ईमान नहीं बना हुआ है तो बच्चे के ऊपर उसने क्या असर डालना है, क्या ईमानी जो फ्यूजात हैं और जो तजल्लियात हैं वो माँ के दिल से निकल करके बच्चे के दिल में कैसे जाएंगी जब उसके अपने ईमान नहीं बना हुआ। वो तो समझती है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद पढ़ देना आप का सबसे बड़ा हक है, राइट, वो तो समझती है कि चंद जो है वो आमाल कर लेना नबी अलैहिस्सलाम का हक अदा कर दिया मैंने, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका और कामयाबी की का मेयार ये तो काफिर का सीखूंगी मैं, ये तो मैं काफिर का डिफाइन किया हुआ सीखूंगी, और उसी को मैं कामयाबी का मेयार भी समझूंगी, उसी से जो है वो मैं तालीम और तरबियत भी हासिल करना जो है वो असल तालीम और तरबियत में उसी तालीम और तरबियत को समझूंगी जो मैंने काफिरों से हासिल करी है। तो ईमान किधर चला गया? कौन सा ईमान, कैसा ईमान? इसका मतलब यह है कि माँ का अपना ईमान नहीं बना हुआ। तो जब उसका नहीं बना हुआ तो ना तो 2 साल से पहले वो अपने बच्चे के अंदर ईमान ट्रांसफर कर सकेगी, ना 2 साल के बाद वो अपने बच्चे के अंदर ईमान ट्रांसफर कर सकेगी, क्योंकि उसका अपना ईमान नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से जब ईमान नहीं बना हुआ होता और वो हो जाती है दीनदार, मजे की तो ये बात है कि बगैर ईमान के ही दीनदार बन जाते हैं हम, तो फिर क्या करती है वो अपने बच्चे के साथ, दीनदार माँ फिर अपने बच्चे के साथ क्या करती है, वो बच्चों को नमाज सिखाती है। ठीक है, वो बच्चे को जो है ना वो दुआएं याद करवाती है, वो बच्चे को जो है वो फलानी पारा याद करवा देती है और फलाना करवा देती है। ठीक है भाई, वो तो बाद में करने की चीजें थी, वो तो चीजें करवानी थी, लेकिन वो तो बाद में करने की चीजें थी ना, पहले तो ईमान बनाने की चीज थी ना। उस जमाने में जिस वक्त ईमान बनाने की मेहनत करनी थी, उस वक्त आप रट्टू तोते वाली मेहनत कर रहे हैं, रटवाने की मेहनतें कर रहे हैं, और उसको आप ईमान समझ के बैठे हुए हैं। वो ईमान नहीं है, वो आमाल है, वो ईमान नहीं है, वो आमाल है। और वो आमाल किस मोटिवेशन के तहत करवा रहे होते हैं उसके ऊपर जाहिर है जवाब यही मिलेगा, नहीं, ईमान की वजह से तो ये वाले अमाल करवा रहे हैं। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ईमान की वजह से ये वाले अमाल करवा रहे हैं, बच्चों को नमाज सिखा रहे हैं क्योंकि ईमान है, इस वजह से नमाज सिखा रहे हैं। ईमान ना होता तो नमाज क्यों सिखाते? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ना ये भी होता है। तो नमाज सिखा रहे हैं क्योंकि सब नमाज पढ़ते हैं, इसी वजह से उसको भी नमाज सिखा रहे हैं। उसके बच्चे ने भी जो है वो पारा याद कर लिया था, इस वजह से मेरे बच्चे को भी पारा याद हो जाए, राइट? तो ये भी तो एक मोटिवेशन होती है ना अमाल को करवाने की। कोई जरूरी नहीं है कि ईमान की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, दीनदारी का माहौल है तो दीनदारी वाले काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ईमान नहीं बना होता तो फिर यही चक्कर चल रहे होते हैं फिर। ठीक है, तो ईमान बनना, तो भाई ईमान तो सारा सीधी सीधी सी बात है कि जो नबी अलैहिस्सलाम को बताया हुआ तरीका है ना, उसी को कामयाबी समझना, उसी को सही समझना, और आप के तरीके के खिलाफ जो भी तरीका उसको गलत समझना, उसको गलत समझना। हम नहीं समझते गलत, हम कहते हैं नहीं वो भी ठीक है, ठीक है मौलवियों का तरीका जो है ना वो दीन का तरीका ये भी ठीक है, लेकिन उनका तरीका भी ठीक है, उनका तरीका भी बहुत अच्छा है। कौन सा ईमान है, कहाँ का ईमान है, कैसा ईमान है? आप के दुश्मन का तरीका भी अच्छा है, ठीक है, इसी वजह से माओं का ईमान नहीं बना हुआ होता। और जब माँ का ईमान नहीं बना हुआ तो औरत का ईमान कैसे बनेगा? तो ज्यादा से ज्यादा अमाल बन रहे होते हैं, ईमान शमान कोई नहीं बन रहा होता। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने लिखा था कि देयर इज व्हाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस टू टीच चिल्ड्रन अबाउट प्रेयर फ्रॉम एज 7 ऑनवर्ड्स, व्हिच इज अमली तरबियत, अमाली तरबियत। ठीक है, तो अमाली तरबियत या नमाजी तरबियत तो 7 साल के बाद आप पढ़ रही होंगी, वो देख करके पढ़ना शुरू कर देगा, कुछ करना कर देगा, ठीक है थोड़ा थोड़ा सा आप चलाती रहें, लेकिन नॉट विदाउट ईमानी तरबियत, नॉट विदाउट ईमानी। ठीक है, सहाबा यूसुफ से वी वर टॉट ईमान बिफोर वी वर टॉट द कुरान। क्या मतलब है इस बात का, बिफोर वी वर टॉट कुरान वी वर टॉट ईमान। ठीक है, तो फरमाते हैं कि जी बच्चों को टाइम दें, उनके साथ बैठ कर खाना खिलाएं, उनको बिस्तर पे सुलाते वक्त अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, और इन बातों को नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ें, यानी ईमान बनाएं उनका। नबी अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों के सामने एक मॉडल के तौर पर पेश करें। ठीक है, छोटे बच्चे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो उनके ऊपर खुद अमल करके बच्चों को दिखाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में बताएं। ठीक है, तो फिर उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, एतमाद पैदा होगा, और ये फोकस पैदा होगा कि अच्छा यही करना है मैंने, क्योंकि यही है काम करने का। इसके खिलाफ जो काम है वो करने के हैं ही नहीं, ठीक है, इनके अलावा जो काम है वो करने के हैं ही नहीं, ये काम है करने का जो मेरी अम्मी मुझे बता रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने किया, यही करने का काम क्योंकि अम्मी बता रही हैं। बच्चा तो बिलीवर होता है, बिलीवर क्या, देखें आप ये बात भी याद रखें, माँ जो होती है ना ये बच्चे के लिए रसूल होती है, बच्चे के लिए रसूल क्या मतलब, रसूल का रसूल, ठीक है ना, क्योंकि जो रसूल के रसूल होते हैं ना, जो रसूल से सीख करके आगे बात पहुंचाते हैं, उनके लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन उन पर वही नहीं आती, वही नहीं आती उनके ऊपर, ठीक है। सूरह यासीन के अंदर जो तीन रसूलों का जिक्र है ना, उसमें अक्सर मुफस्सरीन का यही है कि वो रसूल असल में वही वाले रसूल नहीं थे, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे असल में, लेकिन सूरह यासीन शरीफ के अंदर उनके लिए रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो माँ जो होती है ये पहला रसूल होती है, ऑफ कोर्स वही नहीं नाजुल हो रही होती उसके ऊपर, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की पहली मैसेंजर जो है, नबी अलैहिस्सलाम की पहली पैगाम रसान जो है बच्चे के लिए, तो माँ है ना, माँ ने नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं देखा, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे का सबसे पहले ईमान यानी सबसे पहले एतिमाद किस पर बनता है, किस पर होता है, बाय बर्थ किस पर होता है, माँ के ऊपर होता है, राइट। बच्चे का एतिमाद किस पर, माँ के ऊपर है, ठीक है। तो एतिमाद ही को तो ईमान कहते हैं, ईमान एतिमाद ही का तो नाम है। अब माँ जो उसको बताएगी वो उसने यही वो यही है जो मेरी अम्मी मुझे बता रही है, नहीं? और जिस चीज को मेरी अम्मी ने मना कर दिया वो नहीं, ठीक है, इसी को तो ईमान कहते हैं। अब माँ का काम यह है कि ये जो एतिमाद उसके ऊपर बच्चे को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, इस एतिमाद को ट्रांसलेट करे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतिमाद में, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम पर एतिमाद में इसको वो एक्सटेंड करे या इसको ट्रांसलेट करे, ठीक है। तो वो अपने बच्चों के सामने एक मॉडल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम को पेश करें। छोटे बच्चे जब किसी की बात सुनते हैं तो उसको मॉडल समझते हैं, यानी माँ की जुबान से जब किसी के बारे में बातें सुनते हैं तो वो उसको मॉडल समझते हैं, कि देखो अम्मी उनको मॉडल समझती हैं तो वो मेरे लिए भी मॉडल है, और उस जैसा फिर बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो हो गई फिर इस वाले पैराग्राफ की तफसील हो गई, ठीक है, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये ईमानी तरबियत के बारे में बात हुई, फिर उसके बाद बाकी चीजें, ठीक है, सबसे पहले ईमानी तरबियत, अब उसके बाद है बच्चों को इनाम दें, ये बात की बातें हैं कि बच्चों को आप कोई काम करने पर अवार्ड भी दिया करें। हमने देखा है कि माएं बच्चों को सजा तो देती हैं लेकिन इतना रिवॉर्ड नहीं देती जितना देना चाहिए। उसकी दो वजह होती है, एक तो वजह होती है कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में खुद होती हैं, ठीक है, वो खुद स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती हैं, सास का स्ट्रेस, तो ससुराल का स्ट्रेस, तो फलाने का स्ट्रेस, तो ढमकाने का स्ट्रेस, कभी खामखा अपने ही स्ट्रेस, कभी अपनी हेल्थ का स्ट्रेस, ठीक है। तो उसके बारे में क्लास के शुरू में बात हो चुकी है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे खत्म करना है, उसमें से कैसे निकलना है। अगर आप उसको में से नहीं निकल पा रही तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपने बच्चे की पिटाई करनी है, ठीक है, आपने बच्चे की फिर पिटाई करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप स्ट्रेस में रहते हुए भी बच्चे के साथ जो है वो अच्छे से रह सकें, ठीक है। तो इसके लिए प्री रिक्वेस्ट ये है कि स्ट्रेसफुल हालत में ना रहें, अपने दबाव को कम करें, ठीक है। इसीलिए बच्चे छोटे होते हैं मगर कहते हैं कि औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं, औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं, मतलब बच्चे छोटे होते हैं लेकिन औरतें बड़ी, ये जरा आप तो बताएं ना कि यहाँ पे हजरत कहना क्या चाह रहे हैं। कैन वी गिव मनी इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, नहीं, बच्चे के हाथ में पैसा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बच्चे को अगर किसी दूसरे ने पैसा दिया है ना तो वो भी कहीं छुपा के रख दें, उसका नाम लिख दें उसके ऊपर, एनवलप के ऊपर लिख दें कि ये उसका पैसा है, ठीक है। अगर आपके पास माशाल्लाह अपने पैसे हैं और दूसरे उस तफसीलात उसके अंदर अभी नहीं जा रहे हैं कि वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके पास हैं पैसे, वो बच्चे को जो है ना वो जिसी ने पैसे दिए हैं उसको छुपा के रख दें नाम लिख करके, ठीक है। अलहमदुल्ला हमारे बच्चों के एनवेलप शुरू से बने हुए और अभी भी बने हुए, अभी तक हमने उनके हाथों में नहीं दिए पैसे, सिवाय सबसे जो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, ठीक है। तो नो, डोंट गिव देम मनी इन फोन, ठीक है, दूसरी किस्म के रिवॉर्ड्स नहीं। अच्छा, तो कुदरतन कल ही बात हो रही थी कि बेगम साहब बता रही थी कि उनकी अम्मी को किसी ने अमेरिका में जो है ना वो कहा था कि चची जान या मुआनी जान, लड़कों के हाथ में कभी भी पैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि इनके अपने हाथ में पैसा आ जाता है तो फिर बाहर का माहौल तो इंतहाई शराब है ना, ठीक है। तो लड़कों को बाहर जाना होता है, निकलना होता है, तो वो जाएंगे और फिर उस पैसे से उनका दोस्त उनको कुछ करवाएगा, उनसे काम करवाएगा, ठीक है। तो पैसे हाथ में हरगिज ना दें। अच्छा, तो औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं, तो यहाँ आजाद क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ये माँ के बारे में बात हो रही है? वैसे तो बात तो माँ के बारे में हो रही है, ठीक है, लेकिन ये जुमला जो है ये किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो नहीं सोचे, अगर जहन में आए तो बताइएगा। तो हजरत ने फरमाया कि इसीलिए बच्चे छोटे होते हैं मगर कहते हैं कि औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। मैंने एक दफा एक बच्चे से पूछा, आप ये क्यों कहते हैं कि औरतें बहुत खतरनाक होती हैं? तो कहने लगा कि ये कॉर्नर में भी खड़ा कर देती हैं, कोने में भी खड़ा कर देती हैं, ये मारती भी हैं, इसलिए ये बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। तो बच्चे ने ये कहा, ठीक है। तो अब तो आसान हो गया होगा जवाब देना, ये किन औरतों के बारे में बात हो रही है। इसलिए अपने बच्चों को अगर सजा दें तो बच्चों को आप इनाम भी दिया करें। देखिए, अगर अम्मी का लफ्ज होता ना तो फिर तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने कहा औरतें। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, यहाँ पर स्कूल टीचर्स की बात हो रही है, स्कूल टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है, कि ये कॉर्नर में भी खड़ा कर देती हैं, ये मारती भी हैं, इसलिए बहुत खतरनाक होती हैं। हजरत जी ने स्कूल टीचर्स वाली बात को अम्मी को भी समझाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, कि शायद अम्मी को भी बात समझ में आ जाए कि अगर आप मारेंगे ना तो बच्चा फिर ये भी कहेगा अम्मी भी बहुत खतरनाक होती, ठीक है। यानी हजरत यूज्ड इट टू एक्सप्लेन समथिंग टू मदर्स, ठीक है। तो माशाल्लाह पिछले दिनों एक स्कूल टीचर हैं हमारे खानदान की, तो उनसे बच्चों की बात हो रही थी, उन्होंने भी मजे की बात की, उन्होंने कहा हाँ पाकिस्तान के अंदर हर स्कूल टीचर जो है ना वो फुट्टे से मारती है बच्चे, वो खुद भी टीचर है, ठीक है। तो वो फुट्टे तो ऐसे चलते हैं ना, वो कभी मुंह पे मारनी है फुट्टे से, तो हाथ पे मारनी है फुट्टे से, हमें भी मार, हमें अलहमदुल्ला हमें कभी लगता नहीं था, लेकिन एक दफा मुझे भी मारा था, ठीक है। और फिर अजीब उसके बाद उन्होंने प्यार भी किया था टीचर साहिबा ने, ठीक है, मारने के बाद। वो कोई अच्छी थी, वो बहुत ही आउट होकर के उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ था मुझे याद नहीं है सब, लेकिन ये फुट्टे से मारना, कोने में खड़ा कर देना और ये करना वो करना, तो भाई स्कूलों के अंदर तो यही होता है ना। अब स्कूल में अभी तो पहले आपने यूके के स्कूल के किस्से सुने, पाकिस्तानी स्कूल के किस्से सुने, भाई स्कूल में भी टीचर आती है वो भी तो अंडर स्ट्रेस ही होती है ना, उसको किसने सिखाया होता है कि स्ट्रेस जो है वो कैसे खत्म करना है? टीचर ट्रेनिंग तो वैसे ही कोई नहीं होती हमारे यहाँ, ठीक है, और अगर होती भी है तो वो अखलाकी और दीनी ट्रेनिंग तो नहीं हो रही होती ना टीचर्स की, ज्यादा से ज्यादा कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो जाएगी या जो है वो कुछ सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ ट्रेनिंग हो जाएगी। तो जाहिर है फिर इसी तरह की स्ट्रेस में रह रही होती हैं और अपना गुस्सा भी काबू में नहीं होता और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा होता कि बच्चों को कैसे जो है वो समझाएं। बच्चे खुद भी जो है वो माशाल्लाह जिन घरों से आए हुए होते हैं तो बिगड़े बिगड़ाए तो स्कूल के अंदर आए हुए होते हैं, तो स्कूल ने उसको मजीद बिगाड़ने का ही काम करना होता है फिर, ठीक है। कंट्रोल में तो फिर नहीं होता ना, फिर बच्चा फिर अपने यानी अच्छाई तो नहीं आ रही होती ना, ना घर से ना ना, ना स्कूल से, तो इसी वजह से पिटाइयां हो रही होती हैं दबादब किस्म की, ठीक है। तो फरमाया कि बच्चों को अगर सजा दे भी तो बच्चों को आप इनाम भी दिया करें, यानी सजा जो है वो फिजिकल सजा तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर देनी पड़ जाए या ये सब बातें बहुत मिसारी माँ के टॉपिक में ये बहुत तफसील के साथ ही सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, चाहिए कि उसको भी पढ़ लें, उसको भी रिकॉर्डिंग सुन लें। तो इनाम भी दिया करें, लेकिन इनाम में भी ये बात भी दोबारा ये बंदा ये आज रिपीट कर देगा कि बच्चों को इस तरह इनाम ना दिया करें कि बच्चे फिर उसको अब्यूज करना शुरू हो जाए। ठीक है, क्या मतलब? मतलब ये कि वो फिर ना आपका हाथ मरोड़ना शुरू हो जाए, आपकी आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दें कि इनाम देंगी तो करूंगा, नहीं देंगी तो करूंगा ही नहीं, ये कहते हैं अब्यूज करना। तो फिर इस तरह से क्या हो गया कि आपके बच्चा जो है ना, ये सॉरी, आपका इनाम जो है ना वो आपके अपने गले पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करें, बल्कि इनाम भी जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडली कभी दे दें, अनएक्सपेक्टेडली, ये शर्तें वर्तें लगा करके कि नहीं ये करोगे तो इनाम दूंगी। तो ये तो ऐसे ही हो गया ना कि अब आपने उसको लालच के रास्ते पर डाल दिया है और अब वो लालची बन गया है या बन गई है, और इनाम की लालच के बगैर उसने काम ही नहीं करना। ठीक है, ये हरगिज मतलब नहीं है सर जी का, बल्कि अनएक्सपेक्टेडली कभी उसको इनाम दे दिया या खाली जुबान से अप्रिशिएट कर देना, ये भी तो इनाम ही होता है ना यार। खाली कोई फिजिकल टेंजिबल मटीरियलिस्टिक किस्म की कोई चीज देना तो इनाम नहीं होता ना। ठीक है, तो ये हो गया इंशाल्लाह। बाकी जो है वो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो मुकम्मल हो ही गया है। किसी को कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछने या बता देंगे। क्या लिखा उन्होंने, व्हाट वाज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई सऊदी अरेबिया अलाउज वेमेन टू गो एवरीवेयर एक्सेप्ट ग्रेवयार्ड्स। इट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ पड़नी चाहिए, रिकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने आसान करके पहुंचा दी है हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर, तो उसको सुन लें। ठीक है, चलें यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।